शान विहान से डील करके आ चुका था। उसने अपने तरीके से उसको समझाया और धमकाया भी, और साथ ही उसको एक डेमो भी दे आया कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो क्या हश्र होगा उसका। हालांकि शान ने जो धमकी उसे दी और जो हाल उसका किया, उसके बाद कोई भी आम लड़का अपने कदम पीछे हटा लेगा। पर शान जानता था कि विहान इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था। कह तो आया था कि वो उसके रहते आरवी को छू तक नहीं सकेगा, पर अब वो खुद आरवी के लिए कुछ परेशान था, इसलिए उसने गाड़ी रॉयल क्लब की तरफ घुमा दी। वहां बड़े बड़े रईस लोग ही आते थे। शान वहां पहुंचा और बार में जाकर ड्रिंक करने लगा। उसके दिलो दिमाग में उथल कुथल मची हुई थी। पहले अमरजीत जी से उसकी जंग के वजह से वो चाहकर भी आरवी के पास नहीं जा सकता था, उसे प्यार नहीं कर सकता था। उसकी ये मजबूरी क्या कम थी कि विहान नाम का ग्रहण उनके सर पर मंडराने लगा, जिसे वो किसी भी कीमत पर आरवी तक पहुंचने नहीं दे सकता था। शान काफी देर तक इन्हीं सब और आरवी के बारे में सोचता रहा था, ड्रिंक भी करता रहा, पर जब दिल और दिमाग दोनों में मचा तूफान जरा भी शांत नहीं हुआ, तो ड्रिंक का ग्लास नीचे रखते हुए उसने मन ही मन खुद से कहा, चाहे जो हो, पर मैं उस हराम को आरवी तक कभी नहीं पहुंचने दूंगा। उससे हुई इस एक मुलाकात और जो बातें रश्मि ने बताई, उसके बाद इतना तो मैं भी समझ गया हूं कि वो इतनी आसानी से अपने कदम पीछे नहीं हटाएगा। फिर भी एक मौका दिया है उसे, पर उस पर मुझे रत्ती भर विश्वास नहीं है, इसलिए मुझे आरवी की सेफ्टी का इंतजाम करना ही होगा। उन ठाकुरों से तो उसे खतरा नहीं, पर विहान जरूर उसके साथ गलत कर सकता है, लेकिन मैं उसे उसकी किसी घटिया चाल में कामयाब नहीं होने दूंगा। इस बार आरवी के दर्द की वजह नहीं बनेगा वो, क्योंकि मैं उसे आरवी तक पहुंचने ही नहीं दूंगा। और अगर इस बार उसने आरवी के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की, तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शान ने मन ही मन दृढ़ निश्चय किया कि भले वो आरवी के साथ ना हो सके, उसे अपने प्यार का एहसास ना करवा सके, पर उसे विहान जैसे हैवान के बुरे इरादों का शिकार नहीं बनने देगा। अब तक उसने जितना उसका दिया दर्द सहना था सह लिया, पर अब विहान को आरवी की परछाई तक नहीं पहुंचने देगा। और यही फैसला लेने के बाद उसने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी में टाइम देखा, जो कि रात के 12 बजने का इशारा कर रही थी। अपनी कशमश में उलझे कब इतना वक्त गुजर गया उसे पता ही नहीं चला। जाने कितनी ही बार फोन बजकर थककर चुप हो गया, पर उसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। रात काफी हो गई थी तो वो अब घर के लिए निकल गया। आखिर उसके बेचैन दिल का करार तो वही मौजूद था। शायद अब तक आरवी सो भी चुकी होगी, तो वो कुछ पल उसे महसूस करते हुए अपने व्याकुल दिल को उसका खोया करार लौटा सकेगा। यही सोचकर उसने घर जाने के लिए कदम बढ़ा लिए। उसने ड्रिंक की थी, पर इतनी कि खुद को संभाल सके। इतनी रात थी, पर मुंबई शहर जहां कभी रात हुआ ही नहीं करती। हाँ, दिन के मुकाबले रात में सड़कों पर गाड़ियां जरा कम नजर आ रही थीं। पूरा शहर चांद की रोशनी से नहाया हुआ था। ड्राइव करते हुए शान घर पहुंचा। उसकी कार देखकर गार्ड ने दरवाजा खोल दिया और गाड़ी तेज रफ्तार में अंदर जाने लगी। कार पार्क करने के बाद उसने अपने पास मौजूद चाबी से दरवाजा खोला और फिर अंदर दाखिल हो गया। आरवी ने न तो दरवाजा खोला और न ही वो अंदर लिविंग रूम में नजर आई, जिससे शान को श्योरिटी हो गई कि आरवी सो चुकी है और अब वो उसे अपने सीने से लगाने के लिए अधीरता से लंबे लंबे डग भरते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वो भी इस बात से बेखबर कि उसके सुकून का तो खुद आज सुकून खोया हुआ है और वो रूम में होकर भी जाने कौन सी ख्यालों की दुनिया में खोई हुई है। शान ने रूम का दरवाजा खोला और रूम में कदम रखा। इसके साथ ही उसकी नजर सामने बेड पर बेड से क्राउन से टेक लगाए बैठी थी। वो अपनी सोच में गुम थी, इसलिए शान की कार की आवाज उसके कानों में नहीं पड़ी। पर जब दरवाजे के खुलने की आवाज ने उसके कानों में दस्तक दी, तो वो एकदम से चौंकते हुए होश में लौटी और निगाहें दरवाजे की तरफ घुमा ली। दोनों की निगाहें कुछ पल एक दूजे में उलझी। शान आरवी को सोते देखना चाहता था, लेकिन आरवी जागती हुई मिली तो उसका मन बिगड़ गया और उसने बेरुखी से उस पर से निगाहें फेर ली। आरवी तो उसके चेहरे पर झलकते नाराजगी के भाव के पीछे की वजह समझ ही नहीं सकी और विचलित सी उसे देखते हुए बोली, आप कब आए? मुझे तो आपके आने का पता ही नहीं चल सका। कहाँ थे आप इतनी देर तक? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। इतने फोन भी किए मैंने आपको, पर आपने एक भी कॉल पिक नहीं किया। पता है मैं कितनी परेशान हो गई? आरवी, जो इतनी देर से शान के लिए परेशान थी, उसने एक सांस में ही उस पर सवालों की झड़ी लगा दी थी। शान का मन पहले ही उसे जागते देखकर बिगड़ गया था। अब उसके सवालों का सुनकर उसका दिमाग और ज्यादा खराब हो गया। उसने आंखें छोटी छोटी करके उसे घूरते हुए बुरी तरह खींचते हुए कहा, मैंने कहा था तुम्हें परेशान होने? शान की तेज आवाज में पूछा गया ये एक सवाल और आरवी एकदम से चुप होकर आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगी। शान ने उसी लहजे में आगे कहा, पहले भी कह चुका हूं मैं तुम्हें और आज आखिरी बार कह रहा हूं, तुम्हें मेरी लाइफ में दखल देने का, मुझसे कुछ पूछने का कोई राइट नहीं है। मेरा जहां मन करेगा वहां जाऊंगा, जब मन करेगा तब घर आऊंगा और तुम मुझसे कोई सवाल नहीं करोगी, क्योंकि ये हक मैंने तुम्हें नहीं दिया।
शान की बातें सुनकर आरवी के चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। वो बेड से नीचे उतर गई और शान की ओर बढ़ते हुए उसकी निगाहों से निगाहें मिलाते हुए पूरे विश्वास से बोली, अधिकार है मुझे और ये अधिकार मुझे उसी पल मिल गया था जब आपने मेरी मांग में सिंदूर भरा था, और अब आप खुद भी चाहे तो मुझसे अपनी पत्नी होने का, आपकी फिक्र करने का, आपसे सवाल पूछने का अधिकार छीन नहीं सकते। खैर, मुझे आपसे फालतू की बहस में पड़ना ही नहीं है, बस एक बात बताना चाहूंगी मैं आपको कि कितना ही दूर भाग ले आप मुझसे, रात रात भर बाहर रहें, पर लौटकर आपको आना मेरे ही पास है और इसी घर में है जहां आपका परिवार और आपकी पत्नी रहती है। आरवी ने अपनी नाराजगी को साइड रखते हुए जिस तरह से शान की बात का जवाब दिया, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खुद को उसकी पत्नी कहा, ये शान को अच्छा लगा और उसे लाजवाब कर गया। पर अपनी नाराजगी, गुस्सा और नफरत दिखाते हुए उसने बेरुखी से आरवी पर से निगाहें फेर ली और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। आरवी ने उसके चेहरे पर झलकती थकान और तनाव फांप लिया था। वो कुछ पल खामोशी से उसे जाते देखती रही, फिर चिंता भरे स्वर में बोली, आप ड्रिंक करके आए हैं? ये अंदाजा उसने शान की लाल आंखों को देखकर लगाया था। उसका सवाल सुनकर शान एक पल को रुका जरूर, फिर बिना कुछ कहे बाथरूम में चला गया। आरवी समझ गई कि वो उसे कुछ नहीं बताएगा, तो उसने ठंडी आह भरी और बाथरूम के बंद दरवाजे को देखकर बोली, मैं आपके कपड़े निकाले जा रही हूँ, जल्दी से फ्रेश होकर डिनर के लिए नीचे आ जाइएगा। आरवी ने अपनी बात पूरी की और चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गई। अभी वो एक कदम आगे बढ़ी ही थी कि बाथरूम के अंदर से शान की सख्त रौबदार आवाज आई, मुझे डिनर नहीं करना है, भूख नहीं मुझे। उसके शब्द कानों में पड़ते ही शान के आगे बढ़ते कदम रुक गए। उसने पलटकर बाथरूम के बंद दरवाजे को देखा और सौम्य सी आवाज में बोली, मैं इंतजार करूंगी आपका नीचे, और याद रखिएगा कि भूखी हूं मैं आपके लिए, मुझे भूख लगी भी है, और जब तक आप नहीं खाएंगे मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी, तो एक अच्छे पति की तरह अपनी पत्नी के लिए नीचे आ जाइएगा डिनर के लिए। आरवी की बात पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया, तो आरवी उसके कपड़े निकालकर बेड पर साइड में रखकर रूम से बाहर निकल गई। रात के 12:30 बज चुके थे और इतनी रात को उसने खाना बनाया, फिर डिनर डाइनिंग टेबल पर लगाकर शान का इंतजार करने लगी।
वक्त गुजरा पर शान नहीं आया। काफी देर तक इंतजार करने के बाद आरवी ने 2 प्लेट लगाकर ट्रे में रखी और फिर ट्रे लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। रूम में आकर देखा तो शान कहीं नजर ही नहीं आया। बाथरूम का दरवाजा बाहर से बंद देखकर आरवी ने आगे बढ़कर ट्रे टेबल पर रख दी और कुछ सोचते हुए बालकनी की तरफ बढ़ गई। उसने वहां लगे कर्टन को थोड़ा साइड करके देखा तो वहां से कुछ ही कदमों की दूरी पर खड़ा शान सिगरेट पीता नजर आया। नीचे फ्लोर पर जाने कितनी ही सिगरेटों का ढेर पड़ा हुआ था। शान जल्दी से स्मोकिंग करता नहीं था, ये बात आरवी जानती थी, इसलिए उसको स्मोकिंग करते देखकर वो जितनी हैरान हुई उससे ज्यादा परेशान हो गई। कुछ सोचते हुए वो डोर स्लाइड करके उस तरफ आ गई और शान की तरफ बढ़ गई। शान को अपने सुकून की तलाश में और दिमाग को शांत करने के लिए ये सब कर रहा था, पर अब भी रश्मि की बातों और विहान से हुई मुलाकात ने उसे परेशान किया हुआ था। वो सिगरेट पीते हुए इन्हीं सब के बारे में सोच रहा था जब उसके कानों में आरवी की चिंता भरी आवाज पड़ी, पहले ड्रिंक और अब स्मोकिंग, आज हुआ क्या है आपको? अगर कोई बात आपको परेशान कर रही है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, शायद मैं आपकी परेशानी को कम करने में आपकी कुछ मदद कर दूं, और कुछ नहीं भी कर सकी तो प्रॉब्लम बताने से आपका मन हल्का हो जाएगा। आरवी की आवाज़ कानों में पड़ते ही शान अपने ख्यालों से बाहर आ गया और एकटक सामने खड़ी आरवी को देख रहा था, जो उसके इतने बुरे बर्ताव के बाद भी उसकी परवाह कर रही थी। शान ने जब पलटकर कोई जवाब नहीं दिया और बस खामोश सा उसे देखता रहा, तो आरवी उसके और पास आ गई और उसके हाथ से सिगरेट लेकर उसे जमीन पर फेंकते हुए सख्त अंदाज में बोली, नहीं बताना कुछ तो मत बताइए, पर एक बात अपने दिलो दिमाग में बिठा लीजिए कि शराब पीने या सिगरेट फूंकने से आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो जाएगी, इसलिए आइंदा कितनी ही बड़ी या कितनी ही छोटी बात क्यों ना हो, पर आप दोबारा कभी सिगरेट या शराब को हाथ भी नहीं लगाएंगे। आरली पूरे हक से उसे ऑर्डर दे रही थी और कहीं ना कहीं उसका यूं हक जताना शान के मन में दबे एहसासों को जगा गया था। कुछ कुछ नशे में था और उसका बेचैन दिल तो आरवी की करीबी को महसूस करने को तड़प रहा था। आरवी की बात सुनकर उसकी तड़प पड़ गई और शान ने बिना अपने दिमाग से सोचे समझे भावनाओं में बहते हुए आरवी की पतली कमर पर अपनी मजबूत बाह को लपेटते हुए उसे झटके से अपनी तरफ खींच लिया। उसके अचानक खींचने से आरवी उसके सीने से जा टकराई। उसकी हथेलियां शान के सीने और कंधे पर टिक गई और वो आंखें भारे हैरान परेशान सी उसे देखने लगी।